हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। जैसे ही तारा ने ये सुना, उसका हैरानी के मारे बुरा हाल हो गया था और वो जल्दी से अमन के केबिन की ओर जाने लगी थी। और अभी तारा अमन के केबिन तक पहुंची भी नहीं थी कि तभी करिश्मा जी और अमरेंद्र जी, वो दोनों तारा को अमन के केबिन के बाहर ही मिल गए थे। वो भी अपनी जिन्नती शक्तियों का प्रयोग करते हुए वो सीधा उनके ऑफिस के बाहर पहुंच चुके थे। और जैसे ही उन्होंने तारा को देखा तो अमरेंद्र जी थोड़ा सा हैरान होते हुए बोले थे, बेटा तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? हमें तो लगा था कि तुम्हें अभी काफी टाइम लग जाएगा आने में, तुम गाड़ी वगैरह लेकर आओगी। तभी तारा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा था, जी वो पिताजी मैं यहीं आसपास के इलाके में ही थी और जैसे ही मुझे ऑफिस से कॉल आया तो तुरंत मैं यहाँ आ गई। तब अमरेंद्र जी थोड़ा सा सोच में पड़ गए थे, लेकिन फिलहाल ये वक्त उनके सोचने का नहीं था। ये वक्त सबसे पहले उन्हें अपने बेटे को देखने का था, तो इसलिए जल्दी ही वो लोग अमन के केबिन के अंदर दरवाज़ा खोलकर चले गए थे। और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलकर अंदर गए तो अंदर का हाल देखकर करिश्मा जी चीखते चीखते रह गई थी, क्योंकि अंदर छह लोग बड़ी ही बुरी तरह से खून से सने हुए तड़प रहे थे और अमन, जो कि एक पिशाच बन चुका था, वो बड़ी ही बेदर्दी से सातवें इंसान का खून पी रहा था। जैसे ही तारा और करिश्मा जी और अमरेंद्र जी ने ये देखा, उन लोगों का दिल घिन से भर गया था। उन लोगों की सांस अभी तक चल रही थी उनके शरीर से, जबकि एक एक बूंद को खून चूसा जा चुका था, लेकिन पिसाच के खून चूसने के कारण उनके जिस्म में अब केवल पिसाच का खून बढ़ने लगा था और उनका इंसानी खून ऑलरेडी अमन पी चुका था। तारा समझ चुकी थी कि अगर इनका जल्द से जल्द इलाज नहीं किया गया तो ये भी खूंखार पिसाच के रूप में बदल जाएंगे और उसके बाद ये ना जाने बाहर जाकर कितने लोगों को अपना निशाना बनाएंगे। और देखते ही देखते पूरी की पूरी इंसानियत पिशाच बनने की कगार पर थी। ये सोचते हुए तारा परी ने जल्दी से करिश्मा जी से कहा था, मॉम मुझे लगता है कि हमें हवन यहीं इसी वक्त ऑफिस में करवाना होगा। अमन उस वक्त एक ऑफिस कर्मी का खून पीने में बिजी था तो उसने ध्यान नहीं दिया था कि ऑलरेडी तारा, करिश्मा जी और अमरेंद्र जी उसके ऑफिस में मौजूद थे। क्यों तभी तारा ने इशारे इशारों में करिश्मा जी से कह दिया था कि हमें हवन अब यहीं करना होगा। जैसे ही तारा ने ये कहा, करिश्मा जी हैरान हो गई थीं और कहने लगी थीं, बेटी तुम कैसी बातें कर रही हो, भला हम यहाँ पर हवन कैसे कर सकते हैं? शायद तुम भूल रही हो, इस वक्त पूरा का पूरा ऑफिस ये बात अच्छी तरह से जानता है कि अमन ने ऑफिस के सात लोगों को ऊपर बुलाया है और अभी तक वो कितने घंटे से नीचे नहीं आया है। और जब हम तुम यहाँ आई हो तो तुम अच्छी तरह से जानती हो तुम सारे के सारे ऑफिस वालों के लिए इस वक्त यहीं पर हैं, तो हम इस तरह से यहाँ पर हवन कैसे कर सकते हैं? तभी अमरेंद्र जी भी करिश्मा जी की बातों में हाँ में हाँ मिलाने लगे थे और कहने लगे थे कि हमें अमन को वहीं लेकर जाना होगा, लेकिन अभी 24 घंटे नहीं हुए हैं, इसीलिए हम जादुई बेड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, हमें कुछ और तरीका निकालना होगा। अब तारा ने करिश्मा जी से कहा था कि जितने ऑफिस के लोग हैं वो उन सबको संभाल लेंगे, आप अभी और इसी वक्त मन ही मन में जिंदातों को हुक्म दीजिए कि वो यहाँ इस वक्त ऑफिस में आ जाएं और यहीं आकर साथ साथ सारा सामान भी लेकर आए और यहीं आकर वो महायज्ञ शुरू करें जिसमें अमन को हम वापस से ठीक कर सकते हैं। जैसे ही तारा ने ये कहा, करिश्मा जी अब सोचने लगी थीं और सोचने लगी थीं कि उनकी बहू कोई आम इंसान तो थी नहीं, वो एक परी थी, अगर वो कुछ कह रही थी तो उन्हें उसकी बात माननी चाहिए। तो ये सोचते हुए करिश्मा जी ने जल्दी ही आंखें बंद करके उन दोनों मियाँ बीवी जो कि एकदम नेक जिन्नात थे, उन्हें वहां आने का सिग्नल दे दिया था और साथ ही साथ ये भी बता दिया था कि उन्हें ज़रूरी सामान भी लेकर आना होगा, जो सामान उन्हें यज्ञ में रखना है। जैसे उन्हें करिश्मा जी का संदेश मिला तो उन लोगों ने देरी ना करते हुए जल्दी ही वो लोग कुछ ही सेकंड के अंदर अंदर अमन के ऑफिस में मौजूद थे। जैसे ही अमरेंद्र जी ने ये देखा, वो गुस्से से करिश्मा जी की ओर देखने लगे थे और कहने लगे थे, ये क्या तुम्हें अभी इन्हें नहीं बुलाना चाहिए था? एटलीस्ट कम से कम सोचना तो चाहिए था, तुम अच्छी तरह से जानती हो इस वक्त हम कितने सारे इंसानों की नज़रों में आ सकते हैं और अभी हमारे पास वो सुहालियात, वो ताकत मौजूद नहीं है कि हम इंसानों का दिमाग से इस मेमोरी को मिटा सके, उनकी यादें मिटा सके। तभी करिश्मा जी ने अमरेंद्र जी को कहा था, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार अमन ठीक हो जाए फिर वो सब कुछ संभाल लेगा। ऐसा कहकर जल्दी उन्होंने वही ऑफिस की टेबल हटाकर यज्ञ का सामान का सेटअप करना शुरू कर दिया था। वही अमन, जो कि उस वक्त एक इंसान का खून पी रहा था, उसने जैसे अपने पीछे पलट कर देखा और करिश्मा अमरेंद्र और तारा को देखकर उसको गुस्से के मारे बुरा हाल हो गया था और अपनी लाल सुर्ख आंखों के साथ करिश्मा और तारा को देखने लगा था। उस वक्त अमन के होंठ और उसकी हल्की दाढ़ी पर खून लगा हुआ था, जो कि उस इंसान का था जिसका अमन अभी खून पी रहा था। तारा बड़े ही ध्यान से अमन को देख रही थी, वह सोचने लगी थी कि कोई भी शरीफ इंसान कैसे क्या बना सकता है। अमन बड़ा ही खूबसूरत सा नौजवान था। इतना ही नहीं, उसका एकदम गोरा चिट्टा रंग, रंग नीली आंखें, साथ साथ हल्की हल्की बियर्ड और कमाल का उसका सुडौल सुगठित जिस्म बड़ा ही आकर्षक और हैंडसम था। लेकिन अब पिसाच की ताटने के कारण अमन की रूपरेखा बिल्कुल ही बदल चुकी थी। उसके बाल घुटनों से भी ज्यादा लंबे हो चुके थे, उसके हाथों के नाखून काफी ज्यादा बड़े बड़े हो गए थे और उसके दांत काफी लंबे हो गए थे, जो अमन को बदसूरत बना रहे थे। तारा कितनी ही देर तक अमन का वो बदसूरत रूप देखते रही थी और अमन से अपनी पहली मुलाकात याद करने लगी थी, जब वो पहली बार अमन से टकराए थे, और कितनी ही देर तक अमन को देखते रही थी। और अमन ही उसका वो नेक दिल इंसान है जिसकी वजह से उसके गले का लॉकेट चमकने लगा था। तारा अपनी पुरानी यादों में पूरी तरह से खो गई थी और अचानक से आज अमन का इतना बदसूरत रूप देखने के बाद तारा का दिल अंदर ही अंदर टूट कर रह गया था। वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि उसे अपनी जिंदगी में ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा जब उसकी मोहब्बत, उसका प्यार उसकी आंखों के सामने इस तरह से इतनी बुरी हालत में होगा। तारा का दिल रह रहकर बार बार कचोटे जा रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी टीस थी, उठ रही थी, और तारा ने मन ही मन में सोच लिया था कि आज वो इस पिशाच का अंत हर हाल में कर रहेगी और अपने पुराने अमन को पाकर रहेगी। और अब जैसे ही तारा ने यह देखा कि अमन बड़ी ही बुरी तरह से बारी बारी से कभी अमरेंद्र जी को घूर रहा था, तो कभी करिश्मा जी को घूर रहा था और तारा को घूर रहा था, तब तारा को समझते देर नहीं लगी कि अमन का क्या इरादा था। क्योंकि तारा ये बात अच्छी तरह से जानती थी, जो ये पिसाच हुआ करते थे ये बहुत ही ज्यादा दिमाग से काम लिया करते थे और अपना दिमाग काफी तेजी से चलाया करते थे, जिसकी वजह से ये आज तक इंसानों के पकड़ में नहीं आ पाए थे। लेकिन वो पिसाच ये भूल गया था कि उसके सामने आज कोई इंसान नहीं खड़े हुए थे, बल्कि वो जिन जिसके जिस्म पर पिसाच ने अपने कब्जे में लिया हुआ था।
उसकी माँ बाप उसके साथ खड़े हुए थे, साथ ही साथ उसकी खूबसूरत बीवी जो कि एक परी थी वो खड़ी हुई थी, जो किसी भी कीमत पर उस पिशाच को अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देना चाहती थी। क्योंकि तारा ये बात अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि जो ये पिशाच है, ये शुरू से ही किसी न किसी इंसान को अपने वश में कर पूरी इंसानियत पर अपना कब्जा करना चाहते थे। लेकिन उनके कब्जे में इस वक्त अमन आ चुका था। वो जैसे ही तारा ने अमन की आंखों का रंग और अमन की आंखों को गोल गोल घूमते हुए देखा, तभी तारा अमन की नीयत भांप चुकी थी। वो समझ चुकी थी कि अब अमन यहां से निकलने की अब पूरी की पूरी कोशिश करेगा। वो किसी भी कीमत पर इन लोगों के हाथों में नहीं आना चाहता था। तभी तारा ने सबकी नजरों से बचते हुए अचानक से अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमन के केबिन का और खिड़की का दोनों की दोनों दरवाजों को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। वो अच्छी तरह से जानती थी अमन उसकी शक्तियों का तोड़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि तारा के पास जिन्नातों के वंशज के साथ साथ उसके पिता तपस्वी महाराज के भी शक्तियां थीं, जिन्हें भेद पाना अमन के लिए नामुमकिन था। अमन जैसे ही आगे बढ़ा और वो दरवाजे की ओर जाने लगा, अमरेंद्र जी उसे पकड़ने के लिए आ गए थे, लेकिन तभी अमन ने उन्हें धक्का दे दिया था और तेजी से दरवाजे से बाहर निकलने की ओर आगे बढ़ने लगा था। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा पार करने के लिए उसके गया, तुरंत अमन को जोरों से करंट से लगा था, जिससे वो दूर जा गिरा था। अमरेंद्र जी ये देखकर चौंक गए थे और फिर करिश्मा जी की ओर देखते हुए कहने लगे थे, लगता है तुमने यहाँ कोई जादू किया है। तब करिश्मा जी तारा की ओर देखने लगी थी और फिर जल्दी से बोली थी, हाँ हाँ, आप तो जानते हैं, जब आप नहीं थे तो मैंने कितने ही तरह के तप किए थे, कितने ही सारी तपस्या की थी, तो जिसकी वजह से मेरे पास काफी सारी शक्तियां हो गई थी, तो बस उन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल करके मैंने दरवाजा और खिड़कियों को ब्लॉक किया है। जैसे ही करिश्मा जी ने ये कहा, अमरेंद्र जी मुस्कुराने लगे थे और कहने लगे थे, मुझे तुम पर गर्व है। और फिर जल्दी ही उन दो मियाँ बीवी सफ़ेद जिन्नातों ने अमन का हाथ दोनों तरफ से पकड़ लिया था और तारा ये देखकर हैरान थी। उन दोनों को छूते ही अमन एकदम शांत हो चुका था और एक समझदार बच्चे की तरह उनकी बातें मान रहा था। तभी उन दोनों मियाँ बीवी जिन्नात ने अमन को उस हवन कुंड के बीचों बीच बिठा दिया था और साथ ही साथ उसके चारों तरफ एक लाल रंग का घेरा बना दिया था। अमन अब उस लाल रंग के घेरे से बाहर नहीं निकल सकता था और देखते देखते उन्होंने अपना हवन कुंड करना शुरू कर दिया था। वही तारापरी ने करिश्मा जी से कहा था, जब तक कि ये हवन कुंड चलता है मैं एक जरूरी काम करके आती हूँ। करिश्मा जी समझ चुकी थी कि तारा कहाँ जा रही है। तारा जैसे ही नीचे गई, उसने देखा जितने भी ऑफिस के लोग थे, राधिका के पिता के समय सभी अपना काम वाम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अमन के केबिन की ओर ही देख रहे थे। तभी तारा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा था, आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। आज अमन सर का आज मूड थोड़ा खराब था, जिसकी वजह से वो ऐसी हालत में यहाँ आ गए थे, और वो जो सात एम्प्लॉय हैं वो उनसे काफी सारा काम करवा रहे हैं और साथ साथ उन्हें प्रमोशन भी दिए गए हैं, इसीलिए अमन सर ने उन्हें अपने केबिन में बुलाया था। तभी राधिका के पिता ने कहना शुरू कर दिया था, लेकिन बेटी ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम? तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने खुद सुना है, अमन सर के केबिन से चीखों की आवाज आ रही थी और हम सभी डरे हुए हैं, तो तुम हमें इस तरह की बातें क्यों कह रही हो? तभी तारा राधिका के पिता की बात सुनकर हैरान हो गई थी। उसने तो सोचा था कि इस तरह की दो चार बातें करेगी तो उन लोगों को यकीन दिला देगी, लेकिन अब तारा खुद फंस चुकी थी। और फिर उसने कहा था, मुझे माफ कीजिएगा। ऐसा कहकर तारा ने जल्दी ही जोरों से अपना मुंह खोलकर फूंक मारना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे तारा फूंक मार रही थी और जिस पर तारा की फूंक पड़ रही थी, ऐसे ऐसे वो इंसान पत्थर के जैसा चमकता चला गया था। देखते देखते तारा परी ने पूरा का पूरे ऑफिस वाले लोगों को फ्रीज कर दिया था और वहीं सब कुछ रोक सा दिया था। और उसके बाद तारा जाते जाते रुकी और राधिका के पिता की मूर्ति एकदम उसके सामने खड़े होकर उन्होंने देखते हुए कहने लगी थी, अंकल आप कुछ ज्यादा ही समझदार हैं और आपको ये आपकी समझदारी आपको भारी न पड़ जाए, इसीलिए मुझे मजबूरन आपको फ्रीज करना होगा, आई एम सॉरी। ऐसा कहकर तारा मुस्कुराती हुई कि अमन के केबिन की ओर जाने लगी थी। वो ये सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन इस वक्त ये करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। और साथ ही साथ तारा ने कुछ ऐसा ही मंत्र पढ़कर फूंक दिया था जिससे अमन का ऑफिस आना और सात लोगों को अपने केबिन में बुलाना, वो सब कुछ अब वो लोग पूरी तरह से भूल जाएंगे। ये सोचते हुए तारा जल्दी ही अमन के ऑफिस के अंदर चली गई थी। उसके वहां देखा अमन पूरी तरह से तड़प रहा था। अमन की ऐसी हालत देखकर तारा बहुत ही ज्यादा उदास हो गई थी, क्योंकि अमन के जिस्म पर पिशाच पूरी तरह से हावी हो चुका था और पिशाच को निकालना किसी के जिस्म से बहुत बड़ी बात थी। और अमन अब बहुत ही ज्यादा दर्द में था और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। क्या तारा अमन का ये दुख सह पाएगी? जानने के लिए बने रहिए दोस्तों।